3 करके बड़े प्यार के साथ में। और यदि विलंब देखा अनार का दाना, दूध और चावल उसके मुख में चुंगाने लगे और बड़े प्यार के साथ में हाथ बुलाते हुए कहने लगी, क्या कह रही हैं? कह रही हैं, दुरापजन वर्तिनी रति अपत्रपा भूयसी गुरुक्ति विष वर्षण मति अतीव दौरस्थ्यम गता बपु परवरां जनु परमो परमोदम कुलिन्यान्वये न जीवति तथापि किं परम परम दुर्मयो अयं जनः। राधा जी सुख को पढ़ा रहे हैं बड़े प्यार के साथ। देखो दुरापजन वर्तें, मेरी प्रीति कृष्ण से लग गई, उनसे लग गई, कृष्ण नाम उच्चारण नहीं कर रहे, उनसे लग गई। दुरापचन, उनसे मिलना सहज नहीं, संसार में ऐसी कोई रमणी नहीं, देवलोक में ऐसी कोई नहीं, ब्रज में ऐसी कोई रमणी नहीं जो उनसे मिलना नहीं चाहती। ब्रह्मा शंकर नारद इत्यादि तो ध्यान में भी जिनके चरण कमलों को नहीं प्राप्त कर सकते, बड़े बड़े साधनों से भी लाखों जन्म तक साधन करने पर, अत्यंत कष्ट पर साधन करने पर भी वो दुराप, उनका मिलना बड़ा कठिन है, नहीं मिलते। किंतु न जाने क्यों मेरी प्रीति उनसे लग गई। रति रपत्रपा भूयसी, यह रति जो लग गई अब छूटती नहीं, मैंने छुड़ाने की बहुत चेष्टा की किंतु छूटती नहीं। क्या कहूं, यदि गुरुजन, गुरुजन मैंने हमारे सास ससुर पति हमारे ऊपर में कटुक्ति की वर्षा करते हैं, कहते हैं तरह तरह की कटुक्तियां करते हैं। तुम कुलीन घर की लड़की है, कुलीन घर से आई हमारे घर में, तुम्हारा ये ससुर का घर भी कुलीन, और तुम इस काले से तुम प्रीति रखती है, ये उचित नहीं। कितनी तरह की कटुक्तियां करते हैं, यदि कोई संदेह भी करती है, मैं कहीं श्रृंगार कर, किसके लिए श्रृंगार, कहां जा रही है, संदेह करती है, उस पर भी कुटिला जो है जटिला जैसी तैसी, कुटिला उनकी ननद है, सब समय उनको छित्रन्वेषण दोषी देखने में लगती है। और पति कैसा गाली गलौज सब समय करता है, किंतु मेरी मति तो ऐसी लग गई ये छूटती नहीं है। ओहो, यह मेरा शरीर तो दूसरे के अधीन है। अभी प्रसंग आएगा श्रीमद् भागवत में, ये हिरणे इत्यादि कैसे स्वच्छंद रूप में कृष्ण का दर्शन करते हैं, मिलते हैं, और मैं उनसे मिल नहीं सकती। गोपी होने पर भी उनसे, एक जाति के होने से मैं भी मिल नहीं सकती। ओ मैं अभी तक जीवित हूं बिना उनसे मिले, आखिर जीवित तो है ही हूं, इसलिए मैं मरी हुई हूं, मैं जीवित नहीं। ओ मैं क्या करूं, इस तरह से वो सुख को पढ़ा रही हैं, मैंने सुना रही, सुन रहा है सुख। और बीच बीच में वो क्या करती हैं, गाढ़ा अनुराग भरम निर्भरम भंगुराया। अब वो जबकि उन्होंने इस विरह वेदना को सुनाया, सुख को, सुख ने इसको मुखस्त कर लिया, और मुखस्त करने के बाद में जब उसको खिला पिला दिया और दुलार करने लगी, इतने में वो सुख पक्षी जाति तो उनके हाथों से उड़ गया। उड़ करके धीरे धीरे वो एक पेड़ से दूसरे पेड़, एक अट्टालिका से दूसरी अट्टालिका करते हुए बरसाना के सीमा प्रांत पर वहीं पर नंदगांव और नंदगांव के पास में ही किसी सुंदर बगीचे में कृष्ण जी अपने सखा मधुमंगल के साथ में कुछ बातें कर रहे हैं। वो उड़ता हुआ श्याम के पास ही एक तमाल पर जाकर के वो बैठ गया और वहीं से बैठ करके और अत्यंत मधुर स्वर से कृष्ण 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 करने लगा। जब कृष्ण कृष्ण करने लगा तो कृष्ण का ध्यान मधुमंगल का उधर में आया कि कहां से इतना सुंदर स्वर आ रहा है। कृष्ण को अनुभूति है यह स्वर कैसा है, ठीक श्रीमती जैसा है। सुख पक्षी जिस व्यक्ति का जिस वस्तु का कोई भी स्वर सुनते हैं ठीक वैसे ही नकल कर लेते हैं, उसमें एक ये खूबी है। कृष्ण का स्वर जब बोलेगा तो कृष्ण जैसा, राधा जी का स्वर राधा जी सा, और लोगों का स्वर वैसे, गाय बैलों का स्वर सुनेगा तो वैसे ही कहेगा ऐसे उसमें कर। वो राधा जी के स्वर में अत्यंत मधुर स्वर से अत्यंत विरह में आर्त होकर के वो कृष्ण कृष्ण कह रहा है। कृष्ण सुनते ही अत्यंत मुक्त हो गए। ये स्वर तो राधा जी का है, राधा जी कहाँ आई, खोजने देखा जी पेड़ पर तमाल के पेड़ पर अत्यंत श्याम जैसा वो सुख बैठा हुआ है। कृष्ण देख करके बड़े दुख हो गए, कहा जे पुनः पुनः करो तो वो सुख फिर काटने। अब सुख कृष्ण कृष्ण कहने के बाद में एक श्लोक और भी वो बोला है? वो बोला गढ़ानुराग भर निर्भरम भंगुराया कृष्णे तिनाम मधुरम मृदु पाठयंत्या धिंग मांग अधन्यम मति चंचल जाति दोषा दिव्याकराम वरूह को रखु चुतो अश्मि। ओहो मैं दुर्भागा, गाढ़ अनुराग से अपने हथेली पर लेकर के मुझे प्यार से दुलार कर रही थी और मुझे सुंदर सुंदर वो अनार के लाल लाल दानों को मोती जैसे हमारे मुख में चुंगा रही थी और कह रही कृष्णे तिनाम मधुरम मधुर से भी मधुर मधुर मधुरमे तत्म मंगलम मंगलानाम ऐसे नाम को वो सुना रही है। और धिंग मां मुझे धिक्कार है, मुझे बार बार धिक्कार है, मैं चंचल जाति सुख पक्षी होने के कारण मेरा स्वभाव तो चंचल ही है, मैं इस दलार का मैं पति दान नहीं दे सका, बस झट उनके हाथों से उड़ गया है। और यहाँ पर चितुअश्मी उस देवी से मैं बहुत दूर यहाँ पर आ गया, धिक्कार है मुझको धिक्कार है। इस प्रकार से वो सुख कहने लगा। कृष्ण सुनकर के बड़े आकर्षित हो गए, उन्होंने सोचा जी ये यदि सुख पक्षी मेरे पास में आ जाए मैं भी इसको प्यार करूं और कभी इसको छोड़ूंगा, इसलिए अपने हाथ को ऐसे कर दिया और ऐसे करते हुए उसे बुलाने लगे आजा आजा। कृष्ण की मधुर बोली को सुनकर के वो ठगा सा रह गया और उनके कंधे पर आकर के बैठ गया, कंधे से उछल करके फिर उनके हाथों में आ गया। कृष्ण में उसी भांति दुलार करके कहा अच्छा वो जो तुमने कहा जरा फिर से कहो तुम। फिर वो कृष्ण कृष्ण कहने लगा, अरे वो श्लोक तो बोलो। बस साथ ही साथ में वो श्लोक दोनों जो बतलाया हमने दुरापवर्तनी मति और गढ़ानुराग भर निर्भरम भंगुराया इन दोनों श्लोकों को बड़े प्रेम के साथ में मधुर शब्दों के साथ में पाठ करने लग गया। कृष्ण सुन करके बड़े प्रभावित हुए और उसको अपने पास में और तरह तरह से उसे खिलाने और खेलने लगे। मधुमंगल ने कहा जैसे कोई भी आ जाए अब ये सुख लौटाना नहीं है, ये सुख को अपने पास रखना है। इतने में मधुरिका नाम की एक राधा जी की सहेली वहां पर उपस्थित थी, तो जैसे ये सुख तो हमारी प्रिया जी का है, प्रिया जी इसके बिना जीवित नहीं रह सकते, तुम इसको जल्दी से जल्दी मुझे दे दो। मधुमंगल ने कहा अरे कहाँ की आई है और अपना बतला रही है, ये सुख तेरा है और तेरे स्वामिनी जी का, ये जिसके पास है उसका है, या किसी की दूसरे की संपत्ति नहीं, जिसका पशु जिसके पास में हाथों में है उसी का। अरे नहीं, तुम जितना कहो मदमंगल, ये हमारे सखी का है। अच्छा है तो बुला लो, तुम्हारी सहेली आ जाए और उसको बुला ले जाए। तुम्हारी कौन सहेली है, उसका नाम क्या है? तो बतला नहीं रही, नाम नहीं बतलाएगी। रगड़ झगड़ होने लगी। मधुमंगल ने कहा कि किसी स्थिति में हम लोग नहीं देंगे, तुमको जो कुछ है करना है कर लो, किंतु हम नहीं देंगे। तुम अपनी सखी को बुला लो, हमारे यहाँ इनके सखा से यदि बुला लेगी तो वो चला जाएगा, तो कोई बात। वो कहती है ये कोई भी कीट पतंग कोई भी वस्तु यदि कृष्ण के हाथों में आ जाए वो कभी लौट करके नहीं जाती, इसलिए यह संभव नहीं है कि हमारे लिए जाए। तब सखी हमारी यदि आ जाए तो निश्चय ये चला जाएगा, किंतु हमारी सहेली यहाँ पर ऐसी तैसी नहीं है जो यहाँ आ जाए, इसलिए तुम दे दो। रगड़ झगड़ रहे थे, इतने में मैया जी आ गई, यशोदा मैया। अरे मधुरिका तू कहाँ से आ गई बेटी, और उसको गले से लगा लिया। जब गले से लगा लिया तो कृष्ण और मधुमंगल देखते ही बहुत चक्के रह गए। उन्होंने कहा जैसे इसको इतना प्यार करते हैं, इसको तो ये जानती है, तो ये सुख लेकर के जरूर दे देंगे। उसने कहा जैसे ये सुख हमारे सखी का है, उड़ता हुआ बिछुड़ करके यहाँ चला आया है। मैया ये दे नहीं रहे हैं दोनों, और लड़ते और झगड़ते हैं। उसके कान में कहती है बेटी तू चली जा, और मैं ठीक इनसे लेकर के और मैं इसको तुम्हारे सखी के पास में मैं भेजवा दूँ। मैं जानती हूँ ये सुख पक्षी तुम्हारे सहेली का है। वो तो वहाँ से लौट गई। यशोदा मैया ने वो सुख उनके हाथों से खींच लिया और उनके हाथ पकड़ लिए, और उनको डपटती हुई ये खाने का समय हो गया, नंद बाबा तुम्हारे पिताजी घर में बैठे हैं, अभी तक तुमने स्नान नहीं किया, जो कोई पशु पक्षी मिल जाए उसी से निपट जाता है, तुम्हारा कोई काम नहीं, चलो जल्दी से पकड़ लिया और सुख को पकड़ करके और ले करके कृष्ण को और उनको दोनों को लेकर के घर में आए। कह करके कृष्ण को स्नान कराने जाएगी, कृष्ण ने कहा जी मधुमंगल जरा ये सुख को संभालना, मैया से लेकर के सुख को संभाला और मैं स्नान कर लूँ और फिर तब हम दोनों इसे खेलेंगे। यशोदा जी ने वो सुख उसको नहीं दिया, वो अपने हाथों में ले लिया, बोले जैसे तुम लोगों को कोई जरूरत नहीं है, पहले तुम लोग खाओ पियो और मैं सब इसकी व्यवस्था कर देती हूँ। ये कह करके कृष्ण को स्नान में और ये सब कामों में लगा दिया और उनको इसमें बहला दिया और उस सुख को धनिष्ठा के द्वारा बरसाने में राधा जी के पास में, राधा जी पुनः अपने हाथों में ले लिया और फिर वैसा ही कृष्ण कृष्ण कहने, उसको फिर अनार का दाना और खिला कर, तुम कहाँ उड़ गया था ने? मेरे प्राण भी तेरे साथ में उड़ गए थे। तो उसने कहा कि मैं यहाँ से मुझको धिक्कार है, मैं तुम्हें छोड़ करके मैं चला गया और वहाँ पर नंद नंदन के हाथों में मैं चला गया, मैं वहाँ पर मुग्ध हो गया और सब कुछ भूल गया। इस प्रकार से दोनों में वार्तालाप। इसी प्रकार से ये सुख किसका है, श्रीमती जी का सुख। जब कृष्ण ने अपनी भौम लीला को जब उन्होंने समाप्त किया, जब वो अपराकृत ब्रज में जबकि चले गए जा रहे हैं, उस समय में इस सुख को कहा देखो मैं जा रहा हूं, तुमको यहां रहना होगा। जैसे रामचंद्र जी ने लीला संवरण की और वो चले गए और हनुमान जी को रख दिया अपनी कथाओं का जगत में देने के लिए, उसी तरह से तुम हमारे बाद में तुम इस कथाओं को हमारी लीला कथाओं को जगत को देकर के धन्य करना, तुम अभी मत जाओ। वो विरह में कातर हो गया उस सुख, तभी राधा और कृष्ण के आदेश से वो सुख कुछ दिनों के लिए रह गया। कुछ दिनों के बाद में जब घूमने लगा उसको कहीं भी अच्छा नहीं लगा, वो तो कृष्ण की कथाओं को और लीलाओं को सुनना और देखना चाहता है। वो चारों तरफ में पृथ्वी में उड़ता हुआ खोजता हुआ सब जगह घूमता, किंतु अब राधा कृष्ण तो है नहीं, उनकी लीलाएं नहीं रही, उसको देख नहीं रहा, बड़ा दुखी हो। उड़ते उड़ते कैलाश में गया, कैलाश पर शंकर जी और पार्वती जी में यही भागवत की कथाएं चल रही थी। बस बड़ा अच्छा लगा, वो पेड़ पर एक हरे भरे पेड़ पर वो पत्तों में छिप करके सुनने लग गया। और पार्वती जी स्वभाव से कुछ वैसे ही, वो सृष्टि की बातें और ज्ञान की बातें और सब जो सर्विसर की लीलाएं हैं उनको सुनते सुनते वो सो गई। उस समय में हुंकार इत्यादि का देना बंद हो गया और सुख और वृक्ष के से पत्तों के आड़ से हूँ हूँ और आगे आगे इस प्रकार से काटने लगा। वो सुख पार्वती जी के शब्दों का एकदम ऐसा हूबहू नकल कर लिया था। जब राधा जी के वचनों का स्वर का जब कर लेता है तो ये इनकी तो बात ही क्या है, ठीक उन्हीं के स्वर में वो उसी प्रकार से हूंकार करने लग गया। वो तो हरि कथा में रस मदिरा में मत्त हो करके उसको कह रहे हैं, इधर उधर ध्यान नहीं, पति वो पार्वती जी सो गई हैं कि जगी हुई हैं कुछ पता नहीं कह रहे हैं और हूंकारी कर ही रहा है। इतने में अब रसमयी दशम स्कंद की जब लीला की कथाएं आईं, विशेष करके और सब दामोदर लीला और रासलीला इत्यादि का प्रसंग आने वाला है, उस समय उनकी नींद खुल गई। अरे मैंने तो पहले वाला कुछ सुना नहीं, तो सुना नहीं तो कौन तुम्हारे जैसे अहंकारी कौन भर रहा था, मैं तो भर नहीं रही थी। और फिर से कहिए, कहिए फिर से कहें तो सुनाया किसको, जिसने सुना वो तो अजर अमर बन गया, अनाधिकारी व्यक्ति को इसको नहीं सुनाना चाहिए। किंतु अनाधिकारी व्यक्ति यदि सुन ले तो उसका दुरुपयोग करेगा, जैसे विष को हजम करने वाला व्यक्ति नहीं है और विष खा लिया, शंकर तो बना नहीं और विष पान कर ले तो मरेगा, ऐसे ये भगवान भागवत की कथाएं हैं। अनाधिकारी व्यक्ति इसको न सुने जिसके हृदय में श्रद्धा उत्पन्न हुई है, गुरु और वैष्णव के प्रति श्रद्धा है और ऐसी कथाओं को सुनने के लिए जिसको लोभ उत्पन्न हो गया है, यही उसका हेतु है और कोई दूसरा अधिकार नहीं है। तो ये अनाधिकारी व्यक्ति सुन लिया तो ये अजरमर हो गया और ये अब क्या किया जाए, बस देखा कहाँ है कौन है, देखा जी कोई नहीं, पेड़ों की झुरमुट में देखा, देखा जी पेड़ों की आड़ में पेड़ों के पत्ते जैसे ही श्याम रंग का कोई सूख है, देखते समझ गए इसी ने जरूर ये किया है हूंकार। बस त्रिशूल उठाया और साधा मारने के लिए तो वो उड़ा, ये भी कथा छोड़ करके उसके पीछे दौड़े। कैलाश से बद्रीनारायण अधिक दूर नहीं है, किंतु पर्वतमालाएं ऐसी हैं कि लांघना बड़ा कठिन है, इसलिए 304 माइल घूम करके वहां आना पड़ता है। सुख तो वहां से उड़ा यहां आ गया। बच्चों को मत ले आया करना, क्या कर रहा था,
पर्वत माला दूर है, 400 सुख तो उड़ गया उड़ के उस पास
उड़ा। शंकर जी भी त्रिशूल लो करके चले, वो भी उड़ने में कम नहीं, वो भी उड़े पीछा किया, सुख भागा वहां से और वो आकर के बद्रिकाश्रम में पहुंचा। वहां पर वही प्रसंग चल रहा, व्यास जी अपनी पत्नी बीटिका को यही प्रसंग भागवत की कथाएं अमृत कथाएं सुना रहे हैं और वो तन्मय हो करके उस कथा को सुन रहे हैं। उसमें में मुख उनका कुछ अत्यंत आश्चर्यचकित से भर करके मुख कुछ खुला हुआ है, ऐसे सुन रही है, ऐसी सुंदर कथा, बस मुख खुला हुआ उसके अंदर में वो प्रवेश कर गया। प्रवेश करके जब ही प्रवेश किया इतने में शंकर जी भोले भाले पहुंचे त्रिशूल लेकर, हाँफते हूँफते दौड़े वहां। व्यास जी ने व्यास जी को देखा, व्यास जी को प्रणाम किया, व्यास जी ने उनको प्रणाम किया, गद्दी से उठ गए, दोनों परस्पर मिले। ये आज आपका यह रूप देख रहा हूँ, त्रिशूल लिए हुए यहाँ पर दौड़े आ रहे हैं, क्या बात है, तो ये पहले बतलाओ जी यहाँ पर कोई सुख आया उड़ते हुए, इधर ही तो आया, इधर तुम्हारे आश्रम में घुसा, किंतु वो किधर गया देख नहीं रहा। तो उन्होंने कहा जी क्या जरूरत है, उस सुख से आया तो जरूर, किंतु मैं पीछे बतलाऊंगा, तुम ये बतलाओ जे तुम किस लिए उसको ढूंढ रहे हो, तुम उसको मारना है क्यों, अरे उसने श्रीमद् भागवत की अमर कथाओं को सुन लिया, अरे जबकि वो अजराई अमर हो गया तो भोलेनाथ ये तो बतला वो मरेगा कैसे, तुम कैसे मरेगा। तो शंकर जी भी हंसने लगे, जो सचमुच में सिर खुजलाने लगे, सचमुच में इतना दौड़ करके आया ये मरेगा तो नहीं। बस व्यास जी को फिर से, व्यास जी तो नारायण है ना और शंकर जी उनके दास, इस लीला में दोनों मित्र हैं, भौम लीला में मित्र के नाते या जिस नाते से, फिर प्रणाम करके लज्जित होकर के वो लौट गए। और ये 16 वर्ष तक, कोई कहते हैं 12 वर्ष तक ये पेट में रहे। और सुखदेव गोस्वामी व्यास और उनकी पत्नी के बीच में जो भागवत की कथाएं हुई उसका फिर से रसास्वादन किए बड़े आराम के साथ, निकल नहीं रहे। व्यास जी ने कहा भाई आप कौन हैं, जरा निकल तो जाइए माँ के गर्भ से, अब तो तुम पुत्र इनके हो गए, मैया को क्यों दुख दे रहे, निकल जाओ निकल जाओ। वो तो समाधिस्थ ही समझिए, किसी प्रकार से उसने कहा मैं नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलते, यहाँ आते ही माया ग्रास कर लेगी, पेट में तो जैसे तैसे भगवान के शरणागत होने से उनको दर्शन भी देते हैं ऐसा दिखा है, कभी कभी दर्शन दे देते हैं। इस नरक में रहना हमारे लिए अच्छा है, किंतु विषय लोगों का संग हो और इस माया के तरंग में मैं लपट जाऊं ये अच्छा नहीं मैं मानता। बहुत से ऐसे लोग वैष्णव हैं जो हरिनाम करते हैं पैखाने में बैठ करके, उनकी दुर्गंध उनको नहीं लगती, किंतु विषयों की दुर्गंध से वो अत्यंत घबरा जाते हैं। इसलिए वो लोग पैखाने में रह करके निर्जन में भजन करेंगे, साधु संतों के साथ में करते हैं, किंतु ऐसे नहीं करते। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने कहा मैं माया में उतर करके नहीं आऊंगा, मैं भले ही अच्छा हूं और हरि कथा सुनूंगा। भाई जैसे तैसे तुम निकलाओ, नहीं तो मैया को इतना कष्ट दो मत दो, कैसे तुम निकलेगा। यदि आप इस धराधाम से माया को एक क्षण के लिए भी, एक निमिष काल के लिए भी आप यदि हटा दें तो मैं आ जाऊंगा। अच्छा अच्छा मैं हटा दूंगा, तुम्हारे ऊपर में विश्वास नहीं है। किसके ऊपर में विश्वास, यदि कृष्ण स्वयं आए तो मैं कर सकता हूं निकल सकता हूं, ऐसा आश्वासन दे। बस वो प्रभु का ध्यान किया, प्रभु साथ साथ में आए, बोले भैया मैया को कष्ट मत दो उतर आओ। आप कौन हैं, मैं कृष्ण हूं। कृष्ण को तो स्वर तो वो जानता ही है, बस कृष्ण को समझ करके कृष्ण कहा जे माया को आप जब तक नहीं हटाएंगे तब तक नहीं आऊंगा। कृष्ण ने कहा तलवार की धार पर एक सरसों देने से एक क्षण में जितना समय लगता है वो धार पर ठहरता है, कितना देर कुछ भी नहीं, उतने समय के लिए मैं झट माया को हटाता हूं, तुम जल्दी से। ये कह करके कृष्ण अंतर ध्यान हो गए और वो गर्भ प्रसव हुआ, सुखदेव गोस्वामी गर्भ से निकले और वही प्रबजम प्रब्रजंतमनुपेत पपेत। निकलते ही वो क्या किए, घर से निकले एकदम निर्मम निष्ठुर होकर के, कौन पिता कौन माता कुछ नहीं, कृष्ण ही हमारे सर्वस्व हैं ऐसा समझ करके वहां से निकल करके वन की तरफ में चले। वन की तरफ में जब जाने लगे, इन्होंने पिता ने सोचा जी हमने श्रीमद् भागवत की कथा समाधि में देखी और उसका मैंने वर्णन किया है, अब किसको जगत में दूंगा। संसार से परम विरक्त कोई व्यक्ति हो तो इसको कुछ थोड़ा सा समझ सकता है, और ये सुख तो कौन है, ध्यान लगाया देखा जी वो तो सुख है बस इसी को देना है और किसी को नहीं, किंतु ये तो हाथ से निकल करके भागा जा रहा है। इसलिए कोई कोई कहते हैं हा पुत्र माया में पड़ करके पुकारा, मैं समझता हूं हमारे गोस्वामी ने भी ऐसा नहीं लिखा, वो इसलिए पुत्र पुत्र कर रहे हैं, ऐसा योग्य पुत्र कृष्ण जैसा सुखदेव गोस्वामी। नंद बाबा किसके लिए रोते हैं, कृष्ण के, और ये कृष्ण की लीला कथाओं को सब समय स्मरण दिलाने वाले जो सुखदेव गोस्वामी हैं, परम रसिक हैं ये सुखदेव गोस्वामी, उनके घर में आकर के भी और जा रहे हो तो उनको दुख क्यों नहीं होगा। इसलिए हा पुत्र माने सुख सुख ये खातिर चल रहे हैं। सुखदेव जी गए प्रतिध्वनि ही जंगलों से, हा पुत्र क्या कर रहे। सुखदेव गोस्वामी इसमें नहीं रुके, चले गए थोड़ी देर आगे गए जब आगे गए तो देखा एक सुंदर सरोवर है, उसमें कुछ युवतियां स्नान कर रही हैं। उन्होंने देखा जी अपने कपड़े रख करके और वो स्नान कर रही हैं, अस्पराएं हों या रमणियां हों। देवलोकी सुखदेव गोस्वामी को जाते हुए देखा, तन्मय होकर के जा रहे हैं कृष्ण की लीलाओं में, उनको शुद्ध बुद्ध नहीं है शरीर की और चले जा रहे हैं। उनको देखा स्नान करती रही और पीछे से लंबी दाढ़ी वाले पके हुए जटाओं से जुट श्वेत केश जटाए हैं, आंख की भौहें भी जिनकी केश वो हो गए हैं सफेद सफेद, जो कि संसार से सदा के लिए उपरत हैं, ऐसे व्यास जी जा रहे हैं। वेद वेदांत को प्रकाश करने वाले, 18 पुराणों को प्रकाश करने वाले, श्रीमद्भागवत को प्रकाश करने वाले, ऐसे सुखदेव गोस्वामी जी जा रहे हैं। और उनको देखते ही स्त्रियां जल्द से जल्दी से निकल करके कपड़े पहन करके लज्जित होकर के और उनको दूर से प्रणाम किया। व्यास जी ने कहा जी बड़े आश्चर्य की बात, उनसे पूछा जी बेटियों, तुम तो हमारी नातियों की बेटियों के बेटियों की बेटी हो, हमसे तुमने लज्जा किया, हमारा पुत्र नौजवान नंगे जा रहा है 16 वर्ष का, उसे तुमको लज्जा नहीं आई और हमसे लज्जा रही है। उन्होंने कहा जैसे आप तो पूछ रहे हैं प्रश्न, उन्होंने तो प्रश्न पूछा नहीं, उनकी दृष्टि में हम जड़ वृक्ष की भांति हैं, ऐसे ये जो हैं प्रव्रजंतम, ये प्रव्रजन कर रहे हैं जा रहे हैं और इनको कुछ ज्ञान इत्यादि के लिए हमारे व्यास जी ने श्रीमद्भागवत को सुनाने के लिए जब वो चले गए तो उन्होंने अपने कुछ शिष्य माने बहेलिए सुख पक्षी को पकड़ना चाहते थे, उनको बरहा पीड़म श्लोक याद करा कर कहा जी जंगल में जा कर के कहना। जब वो सुंदर स्वर से इसका उच्चारण कर रहे थे वो सुख इनके तरफ में आकर्षित हुए, बहुत बड़े पक्षी और सब छोटे 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 बड़े बड़े सुख पक्षी उसके जाल में आ गए, सबको पकड़ लिया। कहा जी मंत्र में तो बड़ी शक्ति है। उसी समय सुखदेव गोस्वामी आया और पूछा जी तुमको इस मंत्र को किसने सिखलाया, तो हमारे गुरुजी ने सिखलाया, तुम्हारे गुरुजी कौन है? तो उन्होंने कहा जी व्यास को, अच्छा उनसे जाकर के पूछना जिनका इतना सुंदर रूप है उनका गुण कौन सा है। तब उन्होंने अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांस आपायत अप्त साध्वि लेभे गतिम धात उचितां ततो अन्यम कंगवा दयालु शरणम ब्रज। ये श्लोक है जो कि पुतना उनको मारने के लिए बाल घातनी रुधिर भक्षण करने वाली उनके मांसों को खाने वाली कृष्ण को मारने के लिए आई और उसको सुंदर गति दे दी, माता की गति धात्री उचित गति दे दी, भला ऐसे दयालु कृष्ण को छोड़ करके और किसका भजन किया जाए। आप लोग इस सबसे शिक्षा लेंगे, आप लोगों में अधिकांश ऐसे होंगे राधा कृष्ण का तो भजन करती हैं किंतु वहां पर दुर्गा मैया गणेश ठाकुर हनुमान जी केला मैया और सभी संतोष मैया की मूर्तियां होंगी, किसको छेड़ें किसकी पूजा करें, यदि अपराध हो जाए इसलिए किसी को नहीं सबकी पूजा करती हूँ। इससे पूजा की अनन्यता नहीं होती है, राधा कृष्ण ही सर्प के सबसे ऊंचे, उनकी पूजा करने से सबकी पूजा हो जाती है। ऐसे ही राधा कृष्ण सबके मूल हैं, राधा जी ही समस्त देवियों की मूल है, उनकी छाया इस जगत में ये दुर्गा काली और बिंध्याचल वासिनी और कैलाश और जो कुछ भी करें, उनके स्मरण मात्र से ही ये सब लोग धन्य हो जाते हैं। इसलिए एकांतिक राधा कृष्ण की उपासना चाहिए। ये भागवत को सुन करके भी यदि चित्त और सब जगह लगा रहा है और एकांतिक रूप में कृष्ण का भजन नहीं हुआ तो जीवन बेकार का गया, भूसी कूटने के समान ही ये सब ज्ञान और विज्ञान रह जाएगा। इसलिए कहते हैं वो सुखदेव गोस्वामी इस श्लोक को सुन करके बस एकदम आकर्षित थे, उनके पास में आए और उन्होंने श्रीमद् भागवत की सारी कथाएं जो उन्होंने लिपिबद्ध की उनको सुनाया। उन्होंने इनको कुछ प्रतीक्षा के लिए सहिष्णुता के लिए जनकपुर में भेजा, जनकपुर में ये गए, 7 दौड़ियों पर उनको रोका गया, पूछा नहीं कुछ। जब ये जनकपुर में पहुंचे परीक्षा करने के लिए योग्य की अयोग्य इसको कुछ उपदेश दें कि नहीं, इसलिए जनक जी ने पहली दौड़ी में रुकवा दिया, 7 दिन तक कुछ पूछा नहीं, पानी के लिए नहीं कुछ भी नहीं, किंतु ये लौटे नहीं, खड़े रहे। फिर 7 दिन के बाद में और दूसरी डोढ़ी में प्रवेश कराया। वहां पर लोगों ने आदर करके पूछा, जे पानी परेंगे पियेंगे, आप कहाँ से आ रहे हैं, कौन है। 1 दिन 2 दिन वहां लगे, फिर 3री डोढ़ी में पहुंचे, 4थी डोढ़ी में पहुंचे, 5वीं 6ठी में सुंदर सुंदर युवतियां रमणिया उनको सज धज करके उनको साथ में लेकर के चल रही हैं। इस तरह से वहां पर गए। फिर इसके बाद में तब फिर जबकि राजभवन में 8वें 10वें दिन पहुंचे, वहां पर क्या देखा, देखा नारद ऋषि बैठे हैं, जनक जी बैठे हैं, नारद जी सिंहासन पर बैठे हैं, नीचे में वो बैठे हैं और हरि कथा कुछ हो रही है। इनके पहुंचने पर साथ ही साथ में इनको उठा करके गोदी में और जनक जी ने उस आसन के एक तरफ में बैठा दिया, दूसरी तरफ में नारद जी बैठे। इतने में घर में अंदर में गए और राजभवन से 16 श्रृंगार और आभरण से सजी हुई सुनैना जी को बुला लाए और बीच में उनको बैठा दिया, एक तरफ में सुखदेव गोस्वामी, दूसरे तरफ नारद जी। नारद जी को याद आई, माया से डरे और उठ करके वहां से झट उनको प्रणाम करके नीचे बैठ गए और सुखदेव गोस्वामी वहां के जैसे के तैसे बैठे रहे। ऐसे सुखदेव गोस्वामी जी परम वैराग्यवान, माया से अति, राधा जी के सुख हैं ये साधारण नहीं है। इनको प्रणाम करके और कथा आरंभ। अब आप लोग आगे की कथा सुनिए। बहुत प्रमानंद
राधा बड़े सुंदर श्याम हरि गोविंद हरि गोपाल हरि राधा बड़े सुंदर श्याम हरि
गांधर्ष ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। महावदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकात्तर्या जुहाम पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमान तुष्णीम। तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना उद्विग्नाय राधे तं नयमाम चरणान्तिके। यत्किं करिष्य बहुशः खलु काकुवाणी नित्यं परस्य पुरुषस्य शिखण्डमौले यस्य पदारसनिधे विशुभानुजाय ततकेलिकुञ्जमौनाङ्गनमार्जनीष्य।
कल हम लोग का भागवत प्रारंभ हुआ और प्रथम स्कंध की कथाएं बतलाई गई, उसमें विशेष विशेष जो उपदेश हैं, उपदेश की बातें हैं वो भी सब बतलाई गई। उसमें उन कथाओं में कुछ विशेष विशेष जो बातें हैं संक्षेप में उसका वर्णन करूंगा, आप लोग ध्यान देकर सुनेंगे। कल मैंने जो कथा बतलाई बहुतों से पूछा तो कोई उत्तर ही नहीं दे सके। मैंने पूछा, कहा जे 30 कलयुग के 30 वर्ष बाद में एक कथा हुई और कलयुग के 230 वर्ष के बाद में एक कथा हुई और उसके 30 वर्ष बाद में एक कथा हुई, तो बहुत लोग बतला ही नहीं सके। तो जो सुना उनके लिए तो विमान आएगा देवताओं का, और जो सुने नहीं उनके जम के दूत भैंस गाड़ी लाएंगे उनको ले जाने के लिए। इसलिए खूब अच्छी तरह से सुनो, विशेष करके अब क्या कहूँ, लज्जा आती है, लोगों को खूब सावधानी से सुनना चाहिए। इसमें से मैं एक बात कहता हूँ, बतलाता हूँ। शुभानंद ब्रह्मचारी जी ने बतलाया कल नैमिषारण्य शब्द का अर्थ बतलाया, दो तीन तरह का बतलाया। इसके बाद में वहाँ पर ऋषि लोग यज्ञ करने आए थे, सुखदेव सुत गोस्वामी से उनकी भेंट हो गई। उन्होंने निवेदन किया कि आप तो समस्त शास्त्रों के वेत्ता हैं और हमें कथा सुनाई, और उनसे प्रश्न किया, ए दिगसोन सुनियो सोन, बहन सब कुछ विधवा हो गई, आतुर लज्जब किस काम के लिए यहां पर तुम आया, तो जो उनका मुख नीचे हो गया। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, क्या करूं, अभी भी समय है, तुरंत घर से निकलो, मेरे साथ चलो। गंधारी ने कहा जे मैं भी चलूंगी, कौंती वहां पर सुन रही थी, कौंती बोली जैसे मैं भी चलू, चलो आज ही एक सेकंड नहीं, अब इस घर में पानी नहीं पीना है, चलो बस सबको पीछे के रास्ते से निकाल करके और चलेंगे। वहां से होते हुए किसी वन प्रदेश में पहुंचकर फिर वहां से धीरे धीरे कुछ दिनों में एक जंगल में पहुंचे। वहां पर दो तीन दिन एक ऋषि के आश्रम में वो ठहरे, कुछ आराम किया। इतने में भीम को, अर्जुन को, दुर्योधन को, सबको पता लगा, कृष्ण को लेकर के वहां पर ये लोग पहुंचे मनाने के लिए। विदुर ने कहा खबरदार, एक केस भी इधर मत खसको, हमने जो कहा वैसा चलो, तुम्हारा कल्याण होगा। जब भीम और सभी लोग उनके चरणों में गिरने लगे, चाचा जी आप राजभवन में चले, हम आपकी सेवा करेंगे, हमारे त्रुटि क्या हो गई, कहे कोई त्रुटि नहीं, मेरी त्रुटि केवल है, अब तुम लोग आदेश दो, मैं जाकर के अपने पापों का प्रायश्चित करता हूँ। मैं हरिद्वार में पहुंचे, वो स्थान शायद अभी भी सब हैं, गंगा के किनारे एक ऊंची भूमि पर जंगल के बीच में उन्होंने स्थान तक देकर के कुटी बनाई ऋषिकेश से और ऊपर, और वहां पर निकट ही में गंगा जी हैं और घना घोर जंगल, उसमें कोई ऋषि कदाचित आता जाता है। अब वहां पर निराहार रहने लगे, अभ्यास करने लगे, सूखी हुई घासों को खाने लगे, या कमल कोमल कोमल पत्तों को कभी खा लेते और पानी पी लेते, अधिकांश समय में हवा का आहार करते। हम लोग तो अभी पाठ कर रहे हैं, अभी निर्जला होकर के पाठ करना चाहिए, तभी लस्सी फस्सी और आप सबकी जरूरत होगी, नहीं तो गला सूख जाएगा। वो सब मंगाएंगे, आजकल के व्यक्तियों का शरीर ऐसा बना रखा है जो किसमें प्राण, पहले तो प्राण होता था हड्डियों में, तब फिर मेद में, मज्जा में, आजकल प्राण रह गया है केवल अन्न में, एकादशी दिन भी दो यदि करना है तब मर जाएंगे, ऐसी स्थिति हमारी है, कोई सहिष्णुता नहीं है। पहले के लोग कटना कठोर होकर के भजन साधन करते थे, अरे रूप गोस्वामी तक भी कितना, रघुनाथ दास गोस्वामी तक कितना कठोर साधन था, और अब हम लोग ऐसा अन्नगत प्राण जो थोड़ा सा न निगे तो मर जाएंगे। बहुत कम ही ऐसे लोग हो गए जो उपवास हो करके और इस 7 दिन की कथा सुन गए, पहले देख लेंगे जैसे बैठ जाएं, कुछ खा करके बैठें जिससे कोई असुविधा ना हो, तीन घंटे के बाद तो फिर तो मिल जाएगा भाई, ऐसा मत करो, देख सुन करके भजन कर को इसको एक साधन बनाओ। अब विदुर जी लेकर के चले गए और उनको मंत्र दिया कृष्ण संबंधी। वो मंत्री क्या, मंत्र क्या होगा, मंत्र क्या समझते, श्रीमद भागवत में वो मंत्र दिया गया नारायण संबंधी, ओम नमो भगवते वासुदेव। साधारण लोगों के लिए यही मंत्र है, ये मंत्र उनको दिया। कहा अपने स्थान पर बैठ करके पहले आसन शुद्धि करो, आसन ठीक जमा करके बैठो, एक घंटा दो घंटा तीन घंटा चार घंटा पांच घंटा दस घंटा तब बैठे रहो, तो बैठे रहो, हिलो डुलो नहीं, शरीर को साथ लो, एकदम सीधा बैठ जाओ, हिलाने डुलाने की जरूरत। आसन सिद्ध हो जाने पर जम नियम ये सब ठीक करो, जम मने कोई इच्छा न रहे अंतर की, बाहर की इंद्रियों को भी साथ लो। जब इतना अंतता, ये भक्ति का विरुद्ध नहीं है, भक्ति के अनुकूल है। ऐसा नहीं होने से एक आसन पर बैठ करके दिन रात पढ़ रहे हैं। किसी को मान ले कि 3 लाख हरिनाम करना है, वो कैसे बैठेगा, कैसे बैठेगा, हरिनाम करेगा, चलते फिरते करेगा, वैसे शुद्ध नाम नहीं होगा। ऐसे ऐसे क्या कहते हैं, अंगड़ाई लेकर के और ऐसे करेगा, शुद्ध नाम करने के लिए भावना लेकर के ऐसे शुद्ध रूप में बैठ करके सब भजन, आसन जाम नियम प्राणायाम इत्यादि की भी जरूरत है। प्राणायाम की उस रूप में नहीं, वो अपने आप हो जाता है। इस तरह से जम करके साधन का और भजन का होना चाहिए। ऐसा नहीं यह हरि नाम की माला ली, एक नाम किया मन नहीं लगा, थपर उठ करके पैचारी करने लगे, इधर घूमने लगे, उससे भी नहीं आ तो दो चार आदमी जहाँ बैठे वहाँ जा करके हरि नाम, आप अच्छे हैं कहाँ से आए हैं, हरे कृष्ण, ऐसा हरिनाम नहीं होता। ग्रंथ खोल करके बैठे, इधर भी देख रहे हैं देख भी रहे हैं और तरह की चिंता रहे, ऐसे होगा परीक्षित महाराज की भांति, धुंधकारी की बात की ऐसी। इस प्रकार से साधन भजन होता है। उनको बैठा दिया सचमुच में, वो लोग बैठ गए तीनों। अभी कुछ दिन हुआ था, इतने में वन में दाबाग्नि लगी और इतनी भयंकर हुई कि चारों तरफ से आग को घेर लिया और कहीं भी निकलने की कोई जगह नहीं। और उस समय में आग जब एकदम निकट आई, उन्होंने सारी चेष्टाएं बंद कर दी, भागने का दौड़ने का, कहां जाएंगे भाग करके, और जीवन में हमारा क्या रखा, क्या करना है, बस चुपचाप समाधिस्थ हो गए, भगवान ने चित्त को लगा दिया और आग आई जैसे एक लकड़ी जलाती है वैसे जला करके चली गई। ये उनकी अंतिम दशा है। ये शुद्ध आग में अपने आप भगवान में चित्त लगाया और वो एक मिनट का चित्त लगाया हुआ और आग में जल गए, फिर दूसरी कोई चिंता नहीं, उनके लिए दूसरा जन्म या उनके लिए अच्छा जन्म। इसके बाद में नारद जी ऋषि की कृपा से पांचों पांडवों को लगा ये सब समाचार। पांचों पांडव वहां गए, उनका संस्कार इत्यादि कर करके ब्राह्मण इत्यादि का जैसा होता है सम्मान, सबका सम्मान किया। हम लोगों को ऐसी घड़ियां है, भीष्म पितामह जी ने कहा कि बेटी तू ठीक कह रही है, मैं दूषित अन्न न खाया और मेरे अंदर में असुर प्रवेश कर गया, उस अन्न पीठ पर ही झाड़ू देगा। अरे झाड़ू की झाड़ू नहीं, वचनों की झाड़ू देता है, कुटुक्तियों की झाड़ू देता है, सह लेते हैं, भगवान का भजन करने का नहीं आता। कितने तरह के कष्ट झेलते हैं, मरना जरूरी है, इस जगत का एक सुई और सूता भी धागा भी लेकर के नहीं जा सकते, तो क्या कमाई किया, धन इतना जो कमाई किया लेकर के जाएगा, न स्त्री पुत्र परिवार को लेकर के जाएगा, एक सुई का धागा भी तुम लेकर के नहीं जाएगा, क्या ले जाएगा। ऐसा कुछ करो जो तुम्हारे लिए पाथेय हो, ऐसा भजन करना चाहिए सब लोगों को। और दूसरे के भजन करने से नहीं होगा, एकमात्र कृष्ण ही मुक्ति भी देंगे और मुक्ति में विशेष मुक्ति प्रेम भक्ति दे सकते हैं।
जिनकी आराधना ब्रह्मा शंकर नारद गणेश शंकर सभी देवता लोग करते हैं, उन प्रभु की आराधना करनी चाहिए। एक बात और है इसमें शिक्षा, संक्षेप में बतलाता हूं कि भजन करने वाले व्यक्ति को वैष्णवों को सहिष्णु बनना चाहिए। सहिष्णु किसको कहते हैं? किसी बच्चे ने किसी व्यक्ति ने कोई से भी कुछ इधर उधर कर दी और उठ करके तमाचा दे दिया, बिगड़ गए। हमारे एक महाराज जी थे, रसोई बना रहे थे तो रसोई में अभी चूल्हे में लकड़ी दे रहे थे और उसे जला रहे थे, तो जलाते जलाते उसके ऊपर में हंडिया भी रख दी, पानी भी रख दी, चावल सब रखा है पकाया जाएगा, तो वो जला रहे हैं, जला किंतु लकड़ी गीली, एक द्यासलाई पूरी खत्म हो गई किंतु वो जली नहीं, किरासन का तेल भी डाल दिया फिर भी नहीं जली। अब्रहा साहब भैर जो दूर हो गया, उन्होंने पास से एक लठिया उठाई और चूल्हे पर रखी थी हंडिया और उसके नीचे आग 10 बार मार करके और लकड़ियों को और हंडियों को इधर कहीं इधर फेंक दिया और बिगड़ करके अपने घर में जा करके सो गए। नहीं, ऐसा नहीं, सहिष्णु होना चाहिए। भजन में भी ऐसे सहिष्णु होना चाहिए, घर के काम में भी सहिष्णु होना चाहिए। सहिष्णुता वैष्णवता का प्रथम एक सोपान है। जो लोग वैष्णव में होकर के भी सहिष्णु नहीं हुए, रोज रोज बात बटंडा लगता है। जिसके एक कुल में एक वैष्णव अथवा वैष्णवी का जन्म होने से वह घर स्वर्ग और वैकुंठ बन जाता है, और जिनके घरों में 5 हो 6 हो वैष्णवी पैदा या 6 वैष्णव पैदा हो और वो जल लड़ाई लगती है तो वो क्या है, हम मरी सब